ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं सप्तम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 53। श्री किम पुरुष उचु वयम किम पुरुषस्त्वं तो महापुरुष ईश्वर अयम को पुरुषो नष्टो धिकृत साधु वीर्यदा। श्री किम पुरुष उचु वयम किम पुरुषास्त्वं तो महापुरुष ईश्वर अयम को पुरुषो नष्टो धिकृत साधु वीर्यदा। श्री किम पुरुष उचु वयम किम पुरुषास्त्वं तो महापुरुष ईश्वर अयम को पुरुषो नष्टो धिकृत साधु वीर्यदा। अयम किम पुरुषास्त्वं तो महापुरुष ईश्वर अयम को पुरुष नष्ट पुरुषौचु वयम किम पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वर अयम को पुरुष नष्टो माताजी। श्री कुम पुरुषौचु वयम किम पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वर शब्दार्थ। श्री किम पुरुषः उचु किम पुरुष लोक के निवासियों ने कहा वयम हम किम पुरुषा किम पुरुष लोक के वासी अथवा शुद्र प्राणी त्वम आप तो फिर भी महापुरुषा पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर परम नियंता अयम यह कुपुरुष अत्यंत पापी पुरुष हिरण्यकशिपु नष्ट वध किया गया धिकृत तिरस्कृत होकर साधुबीन साधु पुरुषों द्वारा यदा जब। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। किम पुरुष लोक के वासियों ने कहा, हम शूद्र जीव हैं और आप परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव हम आपकी समुचित स्तुति कैसे कर सकते हैं। जब भक्तों से तंग आकर इस असुर का धिक्कार किया तो आपने इसका वध कर दिया। तात्पर्य, भगवान ने स्वयं भगवद गीता में इस धरा पर अपने प्राकट्य का कारण बतलाया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जब जब धार्मिक सिद्धांतों का हास होता है और अधर्म में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। मैं पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने तथा साथ ही धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान दो प्रकार के कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं, असुरों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने। जब भक्त असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को अभक्तों के आसुरी कार्यकलापों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त के रूप में अपने नियमों पर अटल रहना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए कि आसुरी कार्यकलापों से उनकी भक्ति रुकेगी नहीं। ओम अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथांवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्री विशाखांवितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। तो यहाँ पे किम पुरुष लोक के वासी प्रार्थना करने से पहले भगवान के बारे में कहते हैं कि आप परम नियंता और महापुरुष हैं, लेकिन हम शूद्र पुरुष। तो जब इतने महान भक्त जो नरसिंह भगवान के सामने हैं अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तो ये पढ़ते हुए हमको भी लगता है कि हम क्या हैं। फिर भी आचार्यों की कृपा से, आचार्यों का जो उच्चिष्ट है और वैष्णव की कृपा, यहाँ सब उपस्थित वैष्णव कृपा से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे उन्हीं प्रार्थनाओं के विषय में। किम पुरुष लोक जो है वो जम्बूद्वीप पांचवे स्कंद में वर्णन आता है कि जम्बूद्वीप में है और वहां पे नाम ये देते किम पुरुष, तो उनको देख के कोई बोलेगा किम पुरुष, क्या ये पुरुष हैं, इसलिए नाम पड़ गया किम पुरुष। जैसे आपने सुना होगा किन्नर, किंचित नर है ना, या फिर किम देवता एक लोक का नाम है, किम देवता, क्या ये देवता हैं। तो ये सब जो है ये न पूर्ण देवता है न पूर्ण पुरुष है, किम पुरुष, तो आधे पुरुष और आधे पशु के रूप में। और यहाँ पे किम पुरुष लोक में प्राय सभी वानर के रूप में, जैसे हनुमान जी किम पुरुष लोक के राजा हैं, वो हनुमान जी, तो ये वहां के निवासी जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आप पांचवें स्कंद का 19वें अध्याय का पहला से आठवां श्लोक पढ़ेंगे तो पूरे उसमें यही है, किम पुरुष वासियों का प्रार्थनाएं हैं, और उसमें प्रमुखतः हनुमान जी की प्रार्थना है जो रामचंद्र भगवान के लिए करते हैं। वो बहुत सुंदर उसमें व्याख्या है कि एक श्लोक आता है कि आप तो परम नियंता हैं और आप भगवान हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप भी इस धरा पे आए तो आपको पत्नी का जो है विरह का दुख लेना पड़ा, भाई से अलग होना पड़ा। आता है ना अंतिम में रामायण में जब भाई को त्यागना पड़ता है, पत्नी को त्यागना पड़ता है, तो एक आचार्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो था? तो गृहस्थ जीवन में ये दुख आएगा, भगवान भी गृहस्थ जीवन में आएंगे तो ये दुख को करके दिखाते हैं, आचार्य ऐसा टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ज्यादा प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं भगवान, संरक्षण, उसके बारे में बताते हैं। जैसे भगवान स्वयं गीता में 18वें अध्याय में 56वां श्लोक में कहते हैं कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण मद विपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। सर्व कर्माणि, किसी भी कार्य में लगा रहे कौन, मेरा भक्त मद व्यापश्रत, वो मेरी आश्रय में है, वो मेरी सुरक्षा में है, किसी भी कार्य में लगा रहे। और मत प्रसादात अवाप्नोति, मेरे प्रसाद से मेरी कृपा से बड़ी आसानी से वो शाश्वत लोक में चला जाता है, इस मृत्यु लोक के ऊपर। तो भगवान यहाँ पे स्वयं कहते हैं मत प्रसादात, कि मेरी सुरक्षा में। तो भक्तों के लिए एक ही जो होप है वो है एक ही, भगवान की सुरक्षा, भगवान का दर्शन मिल रहा है भगवान की सुरक्षा पे। जय श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। तो हम ये श्लोक पे चर्चा करने से पहले थोड़ा चर्चा करते हैं कि कैसे भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कैसे, कोई बता सकता है आप में से कैसे अलग अलग प्रकार से भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं? कैसे अलग अलग तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं? गजेंद्र का सुरक्षा किया भगवान ने, जड़ भारत, द्रौपदी का, ये तो भक्तों का सुरक्षा अलग अलग। और इसको हमने थोड़ा कैटेगराइज करके लिखा है कि क्या क्या हथियार या क्या क्या तरीका यूज करते हैं भगवान सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे बद्ध जीव के लिए भी सुरक्षा है भगवान का माया द्वारा। कैसे माया द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं? जैसे जब धान कटता है तो सब किसान लोग अपना अपना भंडारा भर के रखते हैं, और चूहे क्या करते हैं, उनके पास भरपूर रहता है, धान कटा है। वैसे अभी ये अभी तो इस बार अकाल पड़ा है, जब धान कटा होगा पिछले साल, तो बहुत सारे चूहे घूमते रहते हैं और इस बिल से उस बिल तक बिल बनाएंगे और धान इकट्ठा करेंगे, कोई काम नहीं और जरूरत नहीं है। और वो इतना सारा धान दे के इतना सारा कार्य में इतने बिजी हो जाते हैं तो थोड़े वो बेफिक्र हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते। और वहीं पे कौन घूमता है? सांप। आप देखेंगे धान के खेतों में पानी भरा रहता है, सांप घूमते रहते हैं, कई बार वो किसान को काट देता है। जैसे सांप आके उसको निगल लेता है। तो इस गोलकृष्ण महाराज एक कथा में बता रहे थे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हाईवे पे घूम रहे हैं लोग सब अपनी अपनी गाड़ियों में बेफिक्र होके, टाइम का पता नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, कुछ नहीं पता, बस चल रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं, इनको निगल लेते हैं। तो ये भी जीवों को तकलीफ दे के जो है भगवान अपने पास बुलाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। तो ये दूसरा, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, अनेकों अनेक अवतार हैं भगवान के। नरसिंह भगवान का प्रसंग चल रहा है, तो कैसे आके स्वयं सुरक्षा दिए, हिरण्यकशिपु का वध करके प्रहलाद को सुरक्षा दिए। फिर भगवान अपने दिव्य वाणी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया गजेंद्र। गजेंद्र तो इंद्रदुन महाराज थे, लेकिन वो गजेंद्र बन गए, फिर भी उनको याद था पिछले जन्म का। जड़ भरत, वो हिरण का रूप ले लिया, फिर भी उनको याद था कि क्या गलती हुई है। तो ये वाणी उन्होंने इतना श्रवण किया था। ध्रुव महाराज जब उत्तम ध्रुव के भाई को यक्ष ने मार दिया, तो ध्रुव महाराज बदला लेने गए, क्षत्रिय थे तो बदला लेने गए, तो बहुत सारे यक्षों को मारा। अनेक अनेक यक्षों को मार दिया उन्होंने, विजय प्राप्त कर ली। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था, स्वयंभू मनु प्रकट हुए और क्या दिया उनको, शिक्षा कि इतना क्रोध अच्छा नहीं है। फिर उनको समझाए और उससे ध्रुव महाराज शांत हो गए। तो ये भी सुरक्षा है, कैसे भगवान अपनी वाणी के थ्रू हमारा सुरक्षा करते हैं, हमको बचाते हैं। शास्त्रों द्वारा, शास्त्र में अलग अलग कथाएं हैं, उसमें से हमें सीखने मिलता है, वैराग सीखने मिलता है, प्रेम भक्ति सीखने मिलती है, अनर्थों से कैसे बचना है, नम्र कैसे रहना है। जैसे लोमस ऋषि, अब नाम सुने होंगे, लोमस ऋषि का आयु, अगर हम लोग जनरली ब्रह्मा तक का आयु कैलकुलेट करते हैं, लोमस ऋषि का कैलकुलेट नहीं करते। एक बार रामरूप प्रभु बता रहे थे क्लास में कि किसी पुराण में लिखा है कि एक जीव के शरीर पे 35 लाख बाल होते हैं, 35 लाख। तो जब ब्रह्मा की पूरी आयु खत्म हो जाती है, 311 trillion 40 billion ईयर्स, इतना ब्रह्मा का आयु खत्म होता है, तब लोमस ऋषि के शरीर से एक बाल झड़ता है। और धूप से उनके बाल झड़ते नहीं होंगे, ऋषि मुनि तपस्या करके, तो 35 लाख बाल झड़ेंगे तब उनका आयु पूर्ण होगा। हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, तो एक बार महात्मा लोग पहुंच गए, पूछे लोमस ऋषि से, आप कहाँ रहते हो? बोले हिमालय में जहां जगह मिल जाए रह लेता हूं। नहीं, लेकिन कहीं कुटिया बनाई होगी कुछ? बोले देखो भाई, ये जो संसार है ये क्षण भंगुर है। 35 लाख ब्रह्मा का आयु क्षण भंगुर बोल रहे हैं, तो क्यों कुटिया बनाना? इतना छोटा सा अवधि के लिए क्यों कुटिया बनाना? तो देखिए वैराग है ना, हम लोग कितना सा बना लेते हैं छोटी सी आयु के लिए। फिर लीला के द्वारा, भगवान इतनी सुंदर लीला, मनमोहक लीला करते हैं कि जीव का चित्त को हर लेते हैं, चित्त हर लेते हैं, चित्त हारी, चंचल चित्त हारी। ये चंचल चित्त सिर्फ कृष्ण ही अपनी लीला के द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो वो भी सुरक्षा है। भक्त लोग बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, तो कई बार बाहर माया का बड़ा प्रकोप है, अभक्तों का संग होता है, लेकिन लीला स्मरण करके हम सुरक्षित रह सकते हैं, अपने मन को लगा सकते हैं। और भक्तों द्वारा सुरक्षा करते हैं। ध्रुव महाराज चले थे क्रोध के आवेश में कि मेरे को ब्रह्मा से भी बड़ा पद चाहिए, हो सकता था मिल भी जाता, तपस्या करते क्या होता भगवान जाने। लेकिन नारद मुनि आए बीच में, 6 महीने के अंदर उनको भगवान साक्षात दर्शन दिए नारद मुनि की कृपा से। तो भक्तों द्वारा भी भगवान सुरक्षा करते हैं। प्राचीन परिषद 4th स्कंद में पढ़ते हैं हम, पूरा पृथ्वी पे सिर्फ कुशग्रास था, कि कुशग्रास कैसा होता है, यज्ञ करके कुशग्रास छोड़ दीजिए, वो सूख जाता है, वो अपने आप फिर जमीन से कॉन्टेक्ट में आके वो उगने लग जाता है। तो सब जगह कुशग्रास फैला हुआ था। तो प्रचेताओं का तो उद्धार शिव जी ने किया, तो नारद मुनि बोले चलो भाई ने इनका उद्धार किया, मैं पिताजी का करता हूं। तो पहुंच गए पिताजी के पास, उनको पुरंजन व्याख्यान सुनाया और उनका सुरक्षा की। इतना आसक्ति था प्राचीनी भरिषत को, उनका नाम भरिषत था, प्राचीनी कैसे पड़ा, प्राचीन मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर बैठ के पूरे पृथ्वी में बैठ के वो यज्ञ करते थे, तो ये नाम लग गया प्राचीनी भरिषत। और कर्म कांडी यज्ञ कर रहे थे जिनसे उनको स्वर्ग का भोग प्राप्त करना था। नारद मुनि आए, शुद्ध भक्ति का संदेश दिया, उनको इतना वैराग आया, प्रचेताओं का जो है वो आने तक रुके भी नहीं, राज्य छोड़ के चले गए मंत्रियों को देख। एक राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो किसी को राजा बना के फिर छोड़े, ऐसे ही चले। तो अलग अलग तरीके से भगवान सुरक्षा करते हैं, और भी बहुत सारे होंगे, ये थोड़े से हमने डिस्कस किया। और क्या सुरक्षा करते हैं भगवान, हर चीज सुरक्षा करते हैं। क्या श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तुं माम् ये विजना परिपासते नित्य युक्त अभियुक्त ना योगक्षेमं महाम्यहम्। जो है उसकी सुरक्षा करते हैं, जो नहीं है वो ला के देते हैं, बट भक्ति करना। शरीर की सुरक्षा करते हैं, प्रहलाद महाराज के शरीर को कितना हानि पहुंचाने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, सुरक्षा। कई भी जगह पे शरीर की सुरक्षा नहीं भी करते हैं। काफी लोग प्रश्न उठाते हैं कि सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा भगवान की बहन है, अर्जुन इतना बड़ा भक्त है, भगवान का भांजा है अभिमन्यु, 16 साल की उम्र में अभी अभी शादी हुआ है, उसका क्यों वध हो गया, भगवान ने क्यों नहीं बचाया। अगर भगवान अर्जुन का रथ वहां पे लेके आते तो अभिमन्यु बच जाता। तो भले भगवान उसके शरीर को बचाए ना बचाए, लेकिन भक्ति कंटिन्यू है, तो भक्ति बचाते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे द्रौपदी का आया तो द्रौपदी का लाज बचाया भगवान ने। तो हर चीज की जो है रक्षा करते हैं कृष्ण। यहाँ पे प्रभुपाद जी सुरक्षा पे बात करते हैं। इस श्लोक में तीन बातें प्रमुख से बताई गई हैं। एक, किम पुरुषवासी बोल रहे हैं कि हम शूद्र पुरुष हैं, तो ये नम्रता है। और दूसरा है कि कैसे भक्त लोग सहते हैं, भक्तों की सहनशीलता। और तीसरा बता है कैसे भक्तों के जीवन में भी क्यों जो है तकलीफ आता है, प्रहलाद महाराज के जीवन में आया क्यों आता है, और क्या वो तकलीफ है कि नहीं है, तो वो थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नम्रता पे, जब तक व्यक्ति नम्र नहीं होता है उसके हृदय से प्रार्थना नहीं निकलती, वो सिर्फ कंठ से प्रार्थना हम याद करके बोल सकते भगवान के सामने, वो भी अच्छा है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी होगी तब हम नम्र बनेंगे, तब देखिए। कई बार होता है हम साधकों के जीवन में दुख आता है, थोड़ा सा दुख आता है, बहुत बड़ा लगता है, वो दुख में जब कैसे होता है, प्रार्थना कैसे होती है, भगवान के सामने आके कैसे दर्शन लेते हैं, तो वो परिस्थिति तो एक टेम्पररी परिस्थिति है। लेकिन जो व्यक्ति नम्र होता है, जो भक्त नम्र होता है, जो समझता है, जैसे यहां किम पुरुषवासी बोल रहे हैं, हम शूद्र प्राणी हैं, आप जो है महापुरुष, तब हृदय से प्रार्थना निकलेगी। कुंती महारानी वो बोलती है ना कि हम स्त्रियां क्या आपका गुणगान कर सकते हैं, क्या भक्ति कर सकते हैं, आपका भक्ति करने वाले परमहंसा नाम, अमलात्म नाम, मुनि नाम। हालांकि कुंती महारानी इतनी सर्वश्रेष्ठ भक्त थी, सब कुछ उनका ले लिया गया, बच्चों पे इतना हुआ, पति गया, राज्य गया, उनकी पुत्र वधु द्रौपदी के साथ जो हुआ बहुत तकलीफ हुआ, और अभी अभी उत्तरा के गर्भ को जलाने का, जला ही दिया था, जो बाण छोड़ा था अश्वत्थामा ने, जला दिया था गर्भ को, भगवान ने जला दिया। तो कैसे वो कुंती महारानी बोल रहे हैं कि हम कैसे आपकी भक्ति कर सकते, इतने महान भक्त हैं वो। तो ऐसे भक्त लोग जो हैं वो प्रार्थनाएं बोलते हैं, हम उनकी प्रार्थनाओं को उच्चारण करके थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और प्रार्थना करते करते भगवान परिस्थिति लाएंगे, या तो हम नम्र हो जाएंगे या तो भगवान परिस्थिति ले आएंगे। ये भी भगवान का एक सुरक्षा प्रदान करना है। जब भक्त शास्त्र पढ़ते हैं ये भाव से कि हमको कुछ नहीं आता, या फिर हम क्लास सुनते हैं, कथा सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं ये भाव से कि कुछ नहीं आता है, वो व्यक्ति उसका आस्वादन कर सकता है, वो समझ सकता है शास्त्रों को कि मुझे कुछ नहीं आता है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे आता है, वो तो खिड़की दरवाजे बंद हो गए, कुछ अंदर आएगा नहीं। हम कई बार देखते हैं जप करने बैठते हैं, मैं तो इजीली कर लेता हूं जप, बड़ा आसानी से मैं बैठे बैठे 16 माला कर लेता हूं, वो भाव आता है उस दिन जप ही नहीं होता है। भगवान नहीं देख सकते भक्तों में अहंकार, तो हमको वो भाव जो है वो प्रयास करना चाहिए, प्रयास से आएगा। कई बार हम चर्चा करते हैं ना कि एक साधक को अगर नम्र बनना है तो ज्यादा दूर कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी दिनचर्या को देख लीजिए। मंगल आरती में उठने का संघर्ष, जप में जागृत रहने का संघर्ष, 1.5 घंटा हम लोग शरीर को जागृत नहीं रख पा रहे हैं, हमारा शरीर हमारे बस में नहीं है, तो इससे नम्र हो जाने चाहिए। खाने की पूरी सामग्री है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, तो फिर किस चीज का अहंकार होता है जीव को। भरपूर 56 भोग महाप्रसाद आया है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, अपचन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कंट्रोल नहीं हमको हमारे शरीर पे। तो सिर्फ अपनी दिनचर्या को देखेंगे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जो अस्थमा का रोगी होता है वो तो सांस भी नहीं ले पाता, इतना तकलीफ होता है, पंप लेना पड़ता है। तो इतने तुच्छ हैं हम, और ये जीव भगवान बनने का साहस करता है। सोचिए बाहर क्या चल रहा है संसार में, इतना तुच्छ जीव अपने आप को भगवान कहता है। तो ये देख के थोड़ा नम्रता आके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कैसे भक्त लोग सहनशील होते हैं। भगवान कपिल देव बताते हैं तितिक्षा कारुणिका, पहला जो लक्षण बताते हैं भक्तों का, माता देवहूति पूछती है कि आपने बताया कि साधुओं के संग से जो है वो मुक्ति का द्वार खुलता है, तो कौन साधु है, साधु कौन है? तो भगवान कपिल देव बताते हैं साधु कौन है, तितिक्षा करुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, जो सहनशील हो, सहते हुए कृपालु भी हो। हम लोग कई बार सह लेंगे, ठीक है हो गया, लेकिन उस व्यक्ति पे कृपा नहीं करेंगे, दूसरे व्यक्ति को सहते हुए उस पे कृपा करना, ये वैष्णव का गुण है। बहुत मुश्किल है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो सब चीज सहते हैं। हम देखे प्रहलाद महाराज, एक बार भी प्रहलाद महाराज भगवान को नहीं पुकारे कि आप मेरी रक्षा तो करिए, मैं इतना भक्ति कर रहा हूं आपके लिए। पूरा प्रसंग हो गया। देवता लोग जिनको तो इतना तकलीफ नहीं था, था उनका गद्दी चला गया था, पावर पोजीशन सब चला गया, तकलीफ हो रहा था, हिरण्यकश्यप को सेवक बना के रखा था, लेकिन प्रहलाद पे तो फिजिकल टॉर्चर बहुत ज्यादा था। तो नहीं, जब अभिमन्यु का वध कर दिया अधर्म से और कृष्ण लेके आए, सबसे लेट आए थे रात को उस टेंट में जहां पे पांडव रहते थे, शिविर में, तो अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु का गद्दी खाली है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो उतना देखने पर अर्जुन को थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन आके पूछा, क्योंकि सबसे पहले अर्जुन आता था अभिमन्यु से मिलता था, उसको बताता था आज क्या हुआ, पूछता था आज तुमने क्या किया, बहुत प्रिय था। तो अभिमन्यु को न देख थोड़ा विचलित हुआ अर्जुन, लेकिन सोचा आ जाएगा तो पूछा, तो कोई बता नहीं पाया। अभी कृष्ण को सब पता है, कृष्ण ने कुछ नहीं बताया अर्जुन को। जब अर्जुन को पता पड़ा, अर्जुन रोने लग गया, लेकिन फिर भी एक बार भी कृष्ण को दोष नहीं दिया अर्जुन ने, ये भक्त है। दोष नहीं दिया कृष्ण को, द्रौपदी ने दोष नहीं दिया कृष्ण को। कुछ आचार्य बताते हैं, एक बार द्रौपदी ने बोला कि इतना देर क्यों कर दिया आने में, तो जल्दी रक्षा करना चाहिए, भक्त दोष नहीं था। हालांकि अर्जुन को क्रोध आ गया किसके ऊपर, जयद्रथ के ऊपर, और जयद्रथ को मारने का वचन ले लिया। रात को लेटे हुए थे भगवान, लेटे हुए थे अर्जुन, दोनों एक ही शिविर में रहते थे, तो लेटे लेटे अर्जुन ने वचन ले लिया, नहीं वचन शिविर में लिया, फिर दोनों लेटे थे। भगवान बोले, बहुत जोश में आके वचन ले तो लिया है, हा? तब तो कुछ बोले नहीं भगवान, तो ठंडा होने दो इसका, अभी गर्म है तो ठंडा होने दो। फिर अर्जुन से पूछा, अर्जुन तूने वचन ले तो लिया, लेकिन तुम्हारा ये वचन लेने पर पूरे कौरव, उनका सारा जो आर्मी है वो सिर्फ जयद्रथ को प्रोटेक्ट करेगा, कल सुरक्षा देगा, तो तुम कैसे बचाओगे, नहीं तो अग्नि में कूद जाओगे तुम। तुम्हें इतना भरोसा है अपने आप पर? अर्जुन ने कहा, अपने आप पर नहीं भरोसा है, आप पर भरोसा है, क्योंकि आप मेरे साथ हो इसलिए मैं कर लूंगा। भगवान बोले, ठीक है, मेरे को ही चिपका दिया, तो क्या बोलेंगे भगवान, तो अहम भक्ता पराधीना, भक्तों के लिए करते हैं, ठीक है ये भी कर लेंगे। और आप वो पढ़िए और सुनिए महाभारत का, वो दिन का युद्ध जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, एक अक्षणी सेना एक दिन में अर्जुन ने खाली कर दिया, कोई नहीं रोक पा रहा था उसको। भीम और युधिष्ठिर, भीम और एक और भक्त, वो अर्जुन को दोनों तरफ से प्रोटेक्शन देने वाले थे, लेकिन अर्जुन इतना आगे चला गया, कृष्ण उसका रथ लेके इतना आगे चले गए, ये दोनों पीछे ही रह गए प्रोटेक्शन वाले। जयद्रथ को भी प्रोटेक्शन देना था तो नहीं दे पाए। तो ऐसा भक्त तो सहते हैं, लेकिन कभी कभी भक्त प्रार्थना भी करते हैं भगवान को अवतरित होने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, गलत नहीं है। हम देखते हैं ब्रह्मा जी के पास माता पृथ्वी आई थी गाय का रूप लेके, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वयं गए भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए। तो भक्त बुलाते हैं, और भगवान की भगवान जो है भक्तों की प्रार्थना सुन के आते हैं और उनके दोषों का निवारण करते हैं। तो कौन कितना सह सकता है उतना सह। कई बार प्रश्न उठता है कि हमें सहना चाहिए कि हमें बोलना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, जितना हमारा हो, जिसमें हमारा साधना डिस्टर्ब ना हो। अगर अत्यंत सहनशील नहीं, हम सहनशील नहीं और अत्यंत सह रहे हैं और चैंटिंग भी डिस्टर्ब हो रहा है, चैंटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो सॉल्व करिए और जप करना, साधना, ये प्रैक्टिकल है। इसके बाद इसमें भगवान बताते हैं ना कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए। तो क्या भक्तों को तकलीफ होती है, ये प्रश्न उठता है। क्यों भगवान, ठीक है भगवान बचाने आ रहे हैं भक्तों को, कुछ तकलीफ हुआ तो सुरक्षा प्रदान करने आए, लेकिन भगवान ने भक्तों को इस परिस्थिति में डाला ही क्यों, पहले क्यों नहीं बचाया, ये प्रश्न उठ सकता है। पहले भी तो बचा सकते थे, इतना होने ही नहीं देते, हिरण्यकश्यप को तपस्या ही नहीं करने देते भगवान। भगवान तो त्रिकाल ज्ञानी है, उनको तो पता है ये तपस्या करेगा, ब्रह्मा जी वरदान देंगे, आतंक फैलाएगा, नहीं करने देते, लेकिन करने दिया। देवताओं के आने के बाद भी भगवान ने एक्शन नहीं लिया, बोले आप लोग भजन करो मेरा, मैं आऊंगा समय पे।
यहाँ पे भी एक वर्ड आता है,
जब जब धार्मिक सिद्धांतों का हास होता है और अधर्म में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, भगवान छोटे छोटे चीज में नहीं आते, उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तब भगवान आते। तो भगवान बोले ठीक है इसको करने दो, ये आप लोग को तंग कर रहा है, लेकिन अभी तक इसने मेरे शुद्ध भक्त को तंग नहीं किया है, जब वहां पे वो आतंक करने आएगा तब मैं आऊंगा। लेकिन तभी भी प्रहलाद महाराज को काफी टॉलरेट करना पड़ा। तो बहुत सारे कारण हैं, प्रमुखतः दो कारण हैं। एक तो भगवान जो हैं वो भक्तों को शुद्ध करना चाहते हैं। जब कोई साधना से जुड़ता है, जब कोई साधक साधना भक्ति से जुड़ता है, अब वो क्या हो गया, ट्रैक पे आ गया, फास्ट ट्रैक पे, अब वो भक्ति करके निकल जाएगा। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है ना, उसमें कहा गया है कि जिस किसी ने भी एक बार हरि पुकारा, समझ लीजिए उसने कमर कस ली, भगवत धाम जाना ही है, उससे नीचे सेटल नहीं होना है। भगवान ये ले लेते हैं, अब भगवान बोलते हैं अब इसने कमर कस ली है तो मैं भी कमर कस लूंगा इसको जल्दी बुलाने का। लेकिन इतना सारा हमारा जो पिछला हिसाब है वो कौन क्लियर करेगा, तो उसको भगवान कंप्रेस करते हैं, जैसे डेटा कंप्रेस करते हैं हम लोग, तो इंटेंसिटी बढ़ जाता है उसको, तो इसलिए तकलीफ बढ़ती है भक्तों। एक बार वैष्णव महाराज कथा कर रहे थे, ध्रुव महाराज का कथा कर रहे थे, और एक भक्त आया उनके पास कि महाराज जब से, पहले तो अच्छा जीवन था, लेकिन जब से हरे कृष्ण मंदिर से जुड़ा हूं, भक्ति चालू किया है, सोलह माला चार नियम, थोड़ा परेशानी बढ़ गई है जीवन में। महाराज बोले हाँ बढ़ेगी ना, भक्ति करने से बढ़ती है परेशानी, बढ़ाएंगे भगवान, अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तभी तो हम तपेंगे ना, और तपेंगे नहीं तो फिर पकेंगे नहीं। तो भगवान तपा के पका के फिर अपने आप को ऑफर करवाते हैं, है ना, वो गुरु का काम है, इसको तपाओ पकाओ और मेरे को ऑफर करो। लेकिन इसमें भी भगवान की सुरक्षा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें ऐसा तपाने के लिए छोड़ दिए। पहले ही त्रेताप कम है क्या, और भगवान उसका वो गैस को बढ़ा रहे हैं। जैसे एक हम देखते हैं कई बार वो बर्तन होता है ना, स्टील का या पीतल के बर्तन होते हैं, घड़े जैसा, पानी भरते हैं तो उसमें डेंट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मतलब गिर गया तो बेंड हो जाएगा, तो उसको सीधा करना होता है। तो लेके जाएंगे आप, वो कुम्हार नहीं रहता, कौन रहता है जो बनाता है, पीतल का घड़ा बनाता है, सेट करता है, तो वो क्या करता है, वो हथौड़ी लेता है, दूसरे तरफ से मारेगा, लेकिन दूसरे तरफ से मारेगा तो मटका फिर उस तरफ टेढ़ा हो जाएगा, तो मारता जरूर है लेकिन पीछे से हाथ रखता है। तो भगवान का भक्ति करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं जल्दी, उसके लिए थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन भगवान जो है वो सुरक्षा उस समय भी प्रदान कर रहे हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, देखे होंगे, माँ बाप या उनका कोई चाचा मामा कोई रहता है, वो बच्चे को ऐसा उछालते हैं ऊपर, तो पहले तो बच्चा पूरा घबरा जाता है, उसका चेहरा देखना पूरा उसका लाल पीला हो जाता है, घबरा जाता है, क्या मैं हाथ में भी नहीं हूं, हवा में लटक गया, मेरे को तो चलने भी नहीं आता अभी। लेकिन फिर उसको पिताजी पकड़ लेते हैं, नीचे खड़े हैं वो, गिरने नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है, फिर उसको उछालो तो उसको अच्छा आनंद आता है। तो ऐसे ही भक्तों को तपस्या करते करते, तकलीफ झेलते झेलते, फिर उसमें सुख में दुख में भी सुख की प्राप्ति होगी। क्यों, भगवान का हाथ हमें देखना चाहिए। दसवें स्कंद में उदाहरण आता है गिरिराज महाराज का। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो कैसे इंद्र का इतना जो प्रकोप था गोवर्धन पे आ रहा था, ब्रजवासी तो गोवर्धन के अंदर थे, तो पूरा प्रकोप तो गोवर्धन पे आया, तो गोवर्धन कैसे सह लिया इतना, गिरिराज जी ने कैसे सह लिया इतना, नीचे भगवान का हाथ था, इतना सा स्पर्श भगवान का, इतने बड़े पर्वत को इतना इंद्र का 7 दिन 7 रात का ताप को सह लिए खुशी खुशी, और इतनी एक्सटेसी में थे, इतने भाव में थे गिरिराज जी, आचार्य बताते हैं कि वो भगवान ने उंगली पे धारण किया भी नहीं था, वो तो ऐसा फ्लोट कर रहे थे, ऐसा भाव में थे, वो भगवान पे वजन नहीं डाले। तो कैसे सह लिए? क्योंकि भगवान का हाथ है। तो हमारे जीवन में हम चाहें ना चाहें ऐसी परिस्थिति आएगी। अब उस समय क्या करना है वो पता पड़ेगा कि हम तमोगुण में हैं, कि रजोगुण में हैं, कि सत्वगुण में हैं। परिस्थिति विपरीत हो जाएगी, तमोगुण वाला व्यक्ति जाके सो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। रजोगुण में व्यक्ति होगा, वो जो व्यक्ति उसको तकलीफ दे रहा है उसका निंदा करेगा। सत्वगुण में होगा, उस परिस्थिति को देख के उसमें से हल निकाल के वो परिस्थिति को एक माध्यम बना के अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाना है वो डिसाइड करेगा। ध्रुव महाराज के सामने काल आया, बोला महाराज आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपका विमान खड़ा है, लेकिन ये शरीर छोड़ जाइए, शरीर उधर नहीं जाएगा। हाथ जोड़ के विनती कर रहे, शरीर छोड़ दीजिए, यहां पे दूसरा शरीर मिलेगा आपको। ध्रुव महाराज ने काल के सर पे पैर रखा और विमान में चले गए। तो उस परिस्थिति में कौन क्या करता है वो उसके गुणों पे आधारित होता है, और ये कोई एक बार नहीं है कि एक बार एक व्यक्ति ने कुछ कर लिया तो वो हमेशा के लिए उसी गुण में आ गया। ये बार बार परिस्थिति आएंगी, भगवान हमें बार बार मौका देंगे भक्ति में आगे बढ़ने का। दूसरा कारण जो है, भगवान सिखाते हैं, हमको सिखाने के लिए करते हैं। कैसे सिखा सकते हैं? भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, उनको कुछ पढ़ाना है, सिखाना है, जैसे आजकल सब प्ले स्कूल चलता है। अब मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, और बड़ा कोई बुजुर्ग टीचर है, दाढ़ी वाला बाबा ऋषि मुनि बैठ के उसको पढ़ा रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पाता, बोलता है जनरेशन गैप है, तो उसको कनेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन वही बच्चे को कुछ जैसे पपेट शो, क्या बोलते हैं उसका, कठपुतली जो होता है, उसके माध्यम से सिखाएंगे तो जल्दी सीखता है। कुछ गिनने के लिए दे दीजिए, कुछ बॉल दे दीजिए, वो गिनेगा, पेंटिंग करेगा, वो उससे सीख जाएगा। तो भगवान जो इतना डायरेक्ट परिस्थिति हमारे में आएगा, तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से यहां पे इस धरा पे कैसे भक्त साधारण जीव जैसे मनुष्य जैसे रहते हैं, और उनको परिस्थिति विपरीत आती है तो कैसे व्यवहार करते हैं वो हमको सिखाने के लिए। वो हमको सिखाने के लिए है, इसके लिए भगवान जो हैं भक्तों को, शुद्ध भक्तों को इधर भेजते हैं। और उनको कोई भी भक्त ले लीजिए, भागवतम चैतन्य चरितामृत, कहीं पे भी कोई ऐसा भक्त हो जो आया और बड़ा स्मूथ भगवतधाम वापस चला गया, वो आया ही है शिक्षा देने के लिए। आप पांडवों को देख लीजिए, ध्रुव महाराज, भरत महाराज, प्रहलाद महाराज, इतने प्रसंग है, ब्रजवासी श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके लिए सब स्मूथ था नहीं था? भक्ति सिद्धांत जी तो यहां तक बोले कि मैं आया तो था प्रचार करने, लेकिन इधर तो इतना कचरा है, ये कचरा साफ करने में मेरा जीवन चला गया। तो पूरा उन्होंने जितना फाउंडेशन किया है, आप अगर सुनेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर के समय पे गौड़ीय वैष्णव का क्या हाल था, तब पता पड़ेगा कि अभी हमको क्या मिल रहा है। कभी पढ़िएगा उस, लोग बड़ी घृणात्मक दृष्टि से गौड़ीय वैष्णव को देखते थे, जो सबसे परम सुनो, गौड़ीय वैष्णव परम है, परम रस का आस्वादन करने वाले, उनको बड़ा घृणात्मक दृष्टि से देखा जाता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति चंद्र ठाकुर, ऐसे आचार्यों ने वो स्थिति को संभाला। श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार करके वापस जो गौड़ी वैष्णव है स्थापित की। तो इनके जीवन में भी हमको वो देखने मिलता है। और एक बार जो भगवान से संपर्क में आ जाता है, एक्चुअली उसको तकलीफ होता नहीं है, तकलीफ जैसा दिखता है। जैसे आचार्य बताते हैं कि जब वसुदेव कृष्ण को लेकर जा रहे थे मथुरा से वृंदावन, तो यमुना ने रास्ता दिया। पहले तो नहीं दे रही थी, भगवान का चरण छूना था। जैसे ही वो चरण छू ली, पूरा रास्ता खोल दिया और बोले जाओ। वसुदेव जी चले गए, उधर कृष्ण को रखे और उधर माया को लेके आए, माया देवी को लेके आए। अब माया को धारण करके ला रहे हैं, तो यमुना ने क्यों रास्ता दे दिया? फिर भी यमुना ने रास्ता दिया। तो आचार्य बताते हैं कि जिसने कृष्ण को एक बार धारण कर लिया, उसको कुछ नहीं होगा, उसके सब रास्ते खुल जाएंगे, चाहे वो माया को ही गोद में लेके आ जाए। तो भक्तों को भगवान संभालते हैं, और भगवान जब पकड़ते हैं तो बड़ा जोर से पकड़ते हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण इज अ पजेसिव लवर। कृष्ण के बाद एक बार आ गए कोई, वो किसी को जाने नहीं देते। उदाहरण देखिए पूतना का। कृष्ण तो नहीं गए थे पूतना के घर में, कहाँ है पूतना मैया, नहीं गए थे वो तो गुफा में ढूंढने। वो तो कंस भेजा था, मां बन के आई थी, लेकिन एक बार मां बन के आई और गोद में ले ली। अब रो रही है, मुंचा मुंचा छोड़ो छोड़ो बोलती है, छोड़ ही नहीं रहे। तो भगवान पकड़ते हैं भक्तों को, पूरा शुद्ध करके ही छोड़ेंगे। तो थोड़ा सा हमको सहना चाहिए, उसमें भगवान का सुरक्षा देखना चाहिए। हरिदास ठाकुर उन्होंने देखा, जीसस क्राइस्ट प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, और कभी प्रार्थना नहीं किया हरिदास ठाकुर ने। और जो दो दैत्य उनको मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना किया, यवनों के लिए, कि आप इनका सुरक्षा करो, मेरे को मत करो। और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हम बाहरी रूप से नहीं समझ सकते। जैसे एक कथा आती है, छोटा सा हम बताएंगे स्टोरी। एक गांव था, एक कस्बा था, वहां पे एक घर में पिता और उसका पुत्र रहता था। तो एक दिन पुत्र गया, रात को लेट आया, तो दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो सवेरे जाके पिताजी ने देखा तो एक घोड़ा खड़ा है वहां पे। घोड़ा किधर से आ गया? ठीक है, घोड़ा आया तो उसको कुछ खाना पीना खिलाओ। तो पड़ोसी आ गया, बोले अरे आपका तो किस्मत खुल गया। बोले किस्मत खुल गया? वो कैसे? बोले घोड़ा अपने आप आ गया, इतना महंगा घोड़ा है। बोले मैं नहीं मानता सब, जो होगा होगा। तो ये तो अच्छा हुआ बोला आपके लिए। फिर दूसरे दिन रात को फिर उसके बेटे ने दरवाजा खुला छोड़ दिया, घोड़ा चला गया। फिर पड़ोसी आया, बोले ओहो आपका तो बहुत नुकसान हो गया। और ये व्यक्ति कल भी खुश नहीं हुआ था जब मुनाफा हुआ, तो आज भी बोला अरे क्या नुकसान क्या मुनाफा, नफा नुकसान है सब कुछ नहीं जानता मैं। वो पड़ोसी सोच रहा है मूर्ख व्यक्ति है, इसको क्या पता। दूसरे दिन 75 घोड़े अंदर आ गए, रात को दरवाजा खुला था 75 घोड़े आ गए। वो प्रसाद खिलाया था ना, वो टेस्टी लग गया घोड़े को, तो और जाके सबको बुला के लेके आया, इधर प्रसाद अच्छा मिलता है आ जाओ। तो पड़ोसी आया, उसको तो पूरा आंख खुल गया, बोले आपका तो इतना फायदा हो गया, एक एक घोड़ा लाखों रुपए का है और चुन चुन के आपके पास 75 घोड़े आए हैं। बोला क्या नफा नुकसान ये सब छोड़ दो, हम कह नहीं सकते कि ये मुनाफा है। तो पड़ोसी बोला मूर्ख है समझेगा नहीं। तो उस दिन क्या हुआ, अभी 75 घोड़े थे तो लड़के ने सोचा चलो एक घोड़ा का सवारी करते हैं, तो घोड़ा सवारी करने चला गया। तो घोड़े ने लड़के को गिरा के उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। देखो ये व्यक्ति बोल रहा था 75 घोड़े आ गए, ये फायदा है कि नुकसान है पता नहीं। तो पड़ोसी बोल रहा था कि ये फायदा है, लेकिन अभी तो उस 75 घोड़े में से एक घोड़े ने टांग तोड़ दिया ना, तो क्या फायदा हुआ। तो फिर वो आया पड़ोसी, बोला ओ आपका तो नुकसान हो गया, बेटा का इतना एक्सीडेंट हो गया। बोले कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। अगले दिन युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा तो राजा ने क्या किया, उस क्षेत्र के सारे जवान लड़कों को उठाया, चलो युद्ध में। और युद्ध करने गए, जितने लोग इस गांव के सब मारे गए, सारे नौजवान। तो फिर पड़ोसी आया रोता हुआ, बोले ओ आपका तो बेटा जवान था, वो भी मर गया होगा, नुकसान हो गया आपका। बोले नहीं, हमारे बेटे की टांग टूटी थी ना घोड़े से, तो गया ही नहीं, उसको राजा लेके ही नहीं गया, तो बच गया। जैसे वो कथा सुनते हैं कि राजा अपने मंत्री को जेल में डाल दिया, उसी तरह का ये कथा है। तो क्या हो रहा है उसमें, हमारा क्या नफा है क्या नुकसान है, हम पता नहीं लगा सकते, ऐसे पता नहीं पड़ेगा देखने से। और उसी को माया कहते हैं, हम फंस जाते हैं उसी में, बाहरी दृष्टि से देख के हम फंस जाते हैं उसमें। दो तीन मिनट और लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कई बार साधक बोलते हैं कि अगर भगवान इतना सुरक्षा दे रहे हैं तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ करेंगे। नहीं, भक्त जो होते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत बार ये वर्ड बोला, डू द नीडफुल। भावुकता में नहीं आते भक्त। अभी जैसे मंदिर है, सिक्योरिटी क्यों रखना, दरवाजा क्यों रखना, खोल दो भगवान रक्षा कर लेंगे। नहीं, भक्त जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, वो अपना कार्य अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ता है। अर्जुन को कृष्ण ने बोला ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म को भी त्यागो मत, कर्म को मत त्यागो, अपना जो धर्म है अपना जो ड्यूटी है उसको मत छोड़ो। अर्जुन तो बोल रहा था आप ही मारो, आप जब बोल ही रहे हो कि इनको मैं मार ही दिया हूं तो आप मार दो, मेरा क्या जरूरत है। भगवान ड्यूटी सिखा रहे हैं हमको, वही शुद्ध भक्ति है। और भक्त जो है वो भगवान से कभी कोई सेवा लेना नहीं चाहता, ये भी भाव है। हम सुनते हैं रूप गोस्वामी एक बार भजन कर रहे थे और उनके मन में विचार आया कि आज सनातन गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है, कुछ बनाया जाए उनके लिए खीर। और एक छोटी सी लड़की आके वो खीर का सामग्री लेके आ गई, बोले ये किधर से आ गई। तो वो बोली कि मैं बाबा आप अपना भजन करो, मैं लाई भी हूँ सामग्री, बना भी दूंगी। तो सनातन गोस्वामी ने डांटा रूप गोस्वामी को, आपने श्रीमती राधा रानी से सेवा ले लिया। फिर हम जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको धूप लग रही है तो राधा रानी अपना पल्लू लेके खड़ी है, शेर पीछे से आ रहे हैं तो कृष्ण डंडा लेके खड़े हैं। तो सनातन गोस्वामी उनको भी डांटे, आप कुटिया बना लो। भक्त जो है वो भगवान के ऊपर निर्भर जरूर रहता है लेकिन भगवान से सेवा नहीं लेता, वो सेवा करता है। तो हमने देखा आज कि कैसे भगवान हर परिस्थिति में भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कैसे भक्तों को, उच्च कोटि भक्तों को नहीं, रूप गोस्वामी जी बोलते हैं जो एक बार जुड़ गया, कनिष्ठ अधिकारी भी है उसको भी कृष्ण प्रोटेक्शन दे। हमने तो देखा कि बाहर के लोगों को भी जो भक्त नहीं है उनको भी कृष्ण एक प्रोटेक्शन देते। और कैसे हमें नम्र होना चाहिए, अपनी दीनता को देखकर और भगवान की महानता को देख के, भगवान की सुरक्षा को देख के हमको नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। और कैसे हमें देखना चाहिए जब परिस्थिति हमारे विपरीत हो, जब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आए उसमें भी भगवान सुरक्षा कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य से सतोगुण में आके शास्त्रों से देखेंगे या थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो पता पड़ जाएगा कि कैसे हुआ था। तो ये हमने आज देखा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। किसी भक्त का कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है? रंध्रा श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।